ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के वसंत विहार में देश के पहले बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले समारोह में इस बार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक सत्र 2024 का उद्घाटन करेंगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता की न्यायिक हिरासत आज 2 सितंबर तक बढ़ा दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। ये दोनों नेता इस मामले में जमानत पर हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राजधानी के वसंत विहार में देश के पहले बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण देश की राजधानी के लिए एक अच्छी पहल है।
7,50,000 स्क्वायर फीट में ये मॉडर्न बस डिपो जो बन रहा है वो 2 साल में बनकर तैयार होगा और इसकी कीमत करीब 409 करोड़ रुपए है और इसमें 435 बसेस जो है पार्क हो सकेंगी। उसके साथ साथ करीब 250 कार पार्किंग की भी फैसिलिटी है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहाँ हर चीज जो है बिल्कुल अव्वल नंबर की होनी चाहिए। ये एक बहुत सुंदर शुरुआत हुई है।
वहीं श्री गहलोत ने कहा कि ये बस डिपो विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस डिपो में से एक होगा।
आज हमने इसका फाउंडेशन सेरेमनी किया और 2 साल का टारगेट है। अगस्त 26 तक हम ये पूरा मल्टी लेवल डिपो ये बनके तैयार होगा और देश का पहला इतना बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो है और अगर पूरी दुनिया की भी बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा। ये इतनी बड़ी कैपेसिटी के मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो जो है वो आपको कम ही देखने को मिलेंगे।
दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। श्री भारद्वाज ने संवाददाताओं को बताया कि हथिनी कुंड बैराज से लगभग 10,000 से 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अभी यमुना का जलस्तर 204.35 मीटर पर है जो कि चेतावनी के स्तर के आसपास है। श्री भारद्वाज ने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा सभी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं।
अभी दिल्ली पे ओल्ड रेलवे ब्रिज पे लेवल जो है वो करीब 204.35 है और ये वार्निंग लेवल के बिल्कुल करीब है। तो आज हमने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ स्थिति का इंस्पेक्शन किया है। बोट मुनादी का सारा इक्विपमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। मुनादी करीब ही गई है। लोगों को बोला जा रहा है कि अब आप जो है यमुना से दूर रहें तो माँ बाप से खासतौर पर कहा जा रहा है बच्चों को इससे दूर रखें।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले समारोह में इस बार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। इस बारे में आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने श्री गहलोत के नाम की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित शराब नीति घोटाले में जेल में होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में श्री गहलोत ये ध्वजारोहण करेंगे। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंजा ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक पत्र में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की प्रथा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद दिल्ली पुलिस औपचारिक मार्च पास्ट परेड करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि श्री गहलोत द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर एक नियुक्त प्रतिनिधि के बजाय एक निर्वाचित प्रतिनिधि का राष्ट्रीय ध्वज फहराना लोकतंत्र के सिद्धांत का सम्मान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैनात कर्मचारियों की सुविधा के लिए गुरुवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से चलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया कि जिन लोगों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र जारी किया है, उन्हें ही वैध प्रमाण पत्र देखने के बाद मेट्रो में प्रवेश दिया जाएगा। DMRC के अनुसार इन यात्रियों को लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक स्टेशन से आने जाने की अनुमति होगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच मेट्रो रेल 15-15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद नियमित समय सारणी के मुताबिक ट्रेनों का संचालन होगा। केंद्र सरकार ने 78वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देश भर की पंचायतों की महिलाओं सहित 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस बीच पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला में महिला नेताओं के लिए पंचायतों में चुनौतियों, सफलता की कहानियों और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित सभी पंचायती राज प्रतिनिधि इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कल इन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। समारोह के दौरान भाषिणी ऐप के सहयोग से एक बहुभाषी ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया जाएगा। इससे वेबसाइट को सभी 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में देखा जा सकेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्त की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक आंदोलन बन गया है।
हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, अब एक ही आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आने वाले 15 अगस्त पर एक क्या रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है जो देश को एक सूत्र में बांधता है।
तिरंगा उस लंबे आजादी के संघर्ष का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। ये तिरंगा आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे शहीदों को श्रद्धापूर्वक एक बार फिर स्मरण करने का हमारे पास में एक माध्यम है।
दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर अनरिवीलिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सहयोग से आयोजित एक चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के विभाजन से जुड़ी त्रासदी और पीड़ा के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के त्वचा विभाग द्वारा आज विटिलिगो बीमारी पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान त्वचा विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ कौशल वर्मा ने विटिलिगो बीमारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये बीमारी संक्रामक नहीं है और इसका उपचार दवाओं और सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस बीमारी के इलाज के लिए एम्स दिल्ली नैरो बैंड यूवीवी नामक उपकरण के माध्यम से घरेलू उपचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपकरण आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से त्वचा कोशिकाओं के सक्रिय विकास को धीमा कर देता है।
ये बीमारी कॉमन है, इसके वजह से कोई चिंता की बात नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से लगती नहीं है, फैलने वाली बीमारी नहीं है, जेनेटिक बीमारी नहीं है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक सत्र 2024 का उद्घाटन करेंगी। अमृत उद्यान आम जनता के लिए शुक्रवार से 15 सितंबर तक खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
अमृत उद्यान देखने के लिए पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस महीने की 29 तारीख को खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी अमृत उद्यान की सुंदरता देखने के लिए बुलाया गया है। इस बार उद्यान उत्सव में कई नई सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। इस बार इंटरैक्टिव साउंड पाइप प्रदर्शनी को मुख्य आकर्षणों में शामिल किया गया है, जिससे लोगों को संगीत में अनुभव मिलेगा। उद्यान में आए लोगों को स्मृति चिन्ह के रूप में सीड पेपर दिए जाएंगे, जिसे वे गमलों में उगा सकते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के लिए निशुल्क शटल बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। उद्यान के कुछ प्रमुख आकर्षणों में बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन में दुर्लभ और विदेशी फूल, लॉन्ग गार्डन में बड़ा गुलाब गार्डन और बड़े बरगद के पेड़ शामिल हैं। इस बार बच्चों के मनोरंजन के लिए ट्री हाउस और कई अन्य सुविधाओं के साथ बाल वाटिका तैयार की गई है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के सहयोग से नमो भारत ट्रेन तथा अन्य रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वन इंडिया वन टिकट की पहल शुरू करेगी। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। इसके माध्यम से यात्री IRCTC और ऐप पर नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत टिकट रद्द करने और भुगतान प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा पालम में 29.4 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर बारिश लोधी रोड क्षेत्र में दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के वसंत विहार में देश के पहले बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले समारोह में इस बार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। और राष्ट्रपति मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक सत्र 2024 का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।